नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण तथा हरियाणा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में एक बस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में जम्मू में कई स्थानों पर तलाशी ली। आज विश्व पर्यटन दिवस है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, पर्यटन लोगों को आपस में जोड़ने और शांति स्थापित करने में योगदान देता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शिगेरू इशिवा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। भारत तथा बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट मैच कानपुर में जारी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में पहली अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दल रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में रामगढ़ के दूनछक और चम्बम सेक्टर के खोर इलाके में आज दो रैलियां करेंगे। पार्टी नेता प्रियंका गांधी भी कल रैलियों को संबोधित करेंगी। इधर हरियाणा में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह हरियाणा में कई जनसभाएं करेंगे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने आज दोपहर रेवाड़ी में रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि हरियाणा के सभी अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। श्री शाह आज कुरुक्षेत्र जिले के लारवा कस्बे में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आज शाम कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी नेता कुमारी शैलजा भी डबवाली के गोरीवाला और सिरसा के खेरपुर गांव में जनसभाएं करेंगी। आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल महाराष्ट्र में 2 दिन के दौरे पर है। ये टीम राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करेगी। आयोग सरकारी अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों और जिला कलेक्टरों सहित अन्य लोगों के साथ बैठकें करने का कार्यक्रम है। संसद के विभाग संबंधी स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि महताब वित्त समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कर्नाटक में एमयूडीए मुड्डा घोटाले को लेकर भाजपा ने आज कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता सहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को सीबीआई जांच से बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुड्डा घोटाले के नाम पर हजारों करोड़ रूपये की जमीन हड़प ली गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस साल जून में एक बस पर हुए आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में आज जम्मू संभाग के रजौरी और रियासी जिलों में कई स्थानों पर जांच और तलाशी कर रही है। ये बस रियासी जिले के शिवखारी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी, जब इस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने थिरुमाला मंदिर के लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल किए गए घी में मिलावट की जांच करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सर्वश्रेष्ठ की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल 23 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और शांति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पर्यटन लोगों को आपस में जोड़ता है, जो आज के समय की जरूरत है। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यटन दिवस पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पर्यटन शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व शांति का इच्छुक है। उपराष्ट्रपति ने विश्व पर्यटन दिवस को वैश्विक आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर पर्यटन के गहरे प्रभाव का उत्साह मनाने का अवसर बताया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच आपसी समझ के सेतु का निर्माण किया जा सकता है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उत्तर प्रदेश पर्यटन के मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि राज्य सरकार कृषि और ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। वृक्षारोपण के अभियान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत देशभर में अब तक 80 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 80 करोड़ पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार यह लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से 5 दिन पहले 25 सितंबर को पूरा कर लिया गया। सरकार ने आज नई दिल्ली में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज पर सभी चिकित्सा अधिकारियों के लिए संशोधित परिचालनगत दिशा निर्देश और प्रशिक्षण नियम वाली जारी किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि ये दिशा निर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल NAAFLD से पीड़ित व्यक्ति की पहचान करने में निर्णायक हो सकते हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के निदेशक और कुलपति डॉ एसके सरीन से ने बताया कि मोटापा फैटी लिवर रोग होने के सामान्य कारणों में से एक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के कई हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन द्वारा कक्षा 8 तक के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं और कई जिलों में कल भी बंद रहेंगे। राज्य में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सतर्क रहने को कहा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने कहा कि मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून फिर से सक्रिय होने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर बिहार में अगले 24 घंटे तक तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज सुबह से ही तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए आंधी और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरु इशिबा पार्टी के नेतृत्व के लिए हुए मतदान में जीत दर्ज करने बाद जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त होने जा रहे हैं। श्री इशिबा राष्ट्रवादी साने ताकाइची के खिलाफ विजय हुई है। उन्हें श्री ताकाइची के 194 मतों की तुलना में 215 मत मिले। श्री इशिबा अक्टूबर महीने में अगले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हिजबुल्ला के विरुद्ध इसराइल द्वारा किए जाने वाले हमलों में बढ़ोतरी करने के कारण लगभग 700 लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइली सेना हिजबुल्ला के सैनिक ठिकानों और वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाने की दावेदारी कर रही है, लेकिन नागरिकों की बड़ी संख्या में हो रही मौत से अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हंगरी के बुडापेस्ट में हाल ही संपन्न 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन के लिए विश्व के तीसरे नंबर के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन और विश्व के 11वें नंबर की शतरंज खिलाड़ी हरिका को आज सम्मानित किया और दोनों खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कानपुर में खेला जा रहा है। खेल के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। दो क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ताइवान की सू यिन हुई और वू लो यू को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।